ये अध्याय हम लोगों का समाप्त हो गया। आप लोग अच्छी तरह से कल हमको बतलाएंगे चतुर्थ धाम चतुर्थ यान साधन में आप लोगों ने क्या समझा।
नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधो गोपेश गोपिका कांत राधा कांत सप्त चंद्रो गांधी राधे गंगाश्वरी गंधर्वीकेतो मंदीतुतेन्दीवरम् कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना गौरचंद्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय यं प्रभ्रजन्तमन्ते तमते च कृत्यं दैपायनो विरह कातर्याति भाव पुत्रेति तन्मयतया करोमि। भजन रहस्य पंचम चार ध्यान हो गया चार दिन बाकी था और पंचम में हम लोग प्रवेश और कहा था जब सुनेंगे बदलाव समय हो गया छः बजे साढ़े पाँच साढ़े छः बजे छः बजे अपराह्न काली पूजा कृष्णा शक्ति निष्ठा हो गई फिर रुचि हुई अब ये आसक्ति। सबसे पहले श्रद्धा, श्रद्धा के बाद में अनर्थ निवृत्ति साधु संग यहाँ तक दो, इसके बाद में निष्ठता भक्ति और अंत में कृष्ण आसक्ति। आसक्ति यहाँ पर बदला है उपलब्धि कर साधक बने साधकों का कल्याण कैसे हो। उसके भजन के साथ साथ में राधानंदा भक्ति के लिए ये कर रहे हैं जो उन चीज उन ग्रंथों में नहीं है उसको भी स्पष्ट रूप से लेकर के कर माधुर्य कादम्बिनी में ये सब अनर्थ के संबंध में है कुछ किंतु अनर्थ कैसे दूर होंगे कौन कौन से कैसे ये सबको स्पष्ट रूप से बताया। जैसे बताया आत्मबुद्धि शरीर में देहात्म बुद्धि इसी से ही समस्त निकलते हैं तो ये जाएगी कैसे तो उसके लिए स्पष्ट निर्देश निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण साधु। अब इसी को श्रीमद् भागवत से लेकर के इन्होंने और स्पष्ट करके दिखलाया। उन लोगों की सब समय चेष्टा यही बृहद का भगवतार समुचि बनाया, उसमें भी जैव धर्म में चैतन्य शिक्षा छोटी सी पुस्तक और जितने भी पुस्तक है जीव के कल्याण के लिए, जैसे हरिनाम चिंतामणि में हरिनाम में जितनी बाधाएं विघ्न प्रारंभ से हो सकती हैं, कैसे नाम में रुचि होगी, आसक्ति होगी, भाव होगा, उसमें स्पष्ट रूप से दिखलाया कुछ। इसमें केवल अनर्थ सबों को अलग अलग से सबको बतलाया, बतला करके कैसे दूर होगा और भागवत कैसे कह रहे हैं, भागवत से इसका सामंजस्य क्या है, स्पष्ट रूप से दिखलाया। माधुर्य कादंबिनी में भागवत के इन सब का श्लोकों का न ले करके केवल भक्ति स्वामी सिंधु के कदाचित दो एक श्लोकों को स्पष्ट किया और इन्होंने श्रीमद् भागवत से सब श्लोकों को लेकर के और तब उसको वर्णन करके स्पष्ट रूप में दिया अनर्थ क्या क्या है, कैसे ये दूर हो, उसमें में श्रद्धा में कैसी कैसी स्थिति होती है, साधु के संग में भजन करते 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 अनिश्चिता भक्ति में क्या स्थिति होती है, फिर निश्चिता में कैसे आती है, फिर इसके बाद में भी दूर हो गया तो फिर निष्ठा के बाद में रुचि में क्या क्या स्थिति होगी, रुचि कैसे होगी, इसके संबंध में बताया। यदि गंभीर रूप से इस चीज़ों को पढ़े तो वो उसमें आएगी, जरूर आएगी, दिन रात चिंतन करें, नए नए कितने विचार मिल रहे हैं जो उन ग्रंथों में नहीं है और उनमें जो है उसमें भी नए विचार हैं, किंतु ये सब जैसे अभी ये बतलाएंगे श्रीमता स्वकथा ये है और इसमें वे तत्ते अनुकंपा है, ये सब श्लोकों में जो क्या क्या गूढ़ रहस्य छिपा है उसको भी इसमें थोड़े से लोग बतलाए, किंतु श्लोकों को देखने से पता लगता है कि कितना गंभीर उनका हाथ है, वो जरूर इसको उपलब्धि की। इसलिए मैं कैसे प्रवेश करेंगे, उन चीज़ों को कैसे समझेंगे, ये सब इसमें विनोद ठाकुर जी ने अनुभव करके ये सब चीज़ों को दिया। भागवत से उनका क्या संपर्क है, भागवत उसके संबंध में क्या है, भागवत ही तो हम लोगों का मूल है, तो उन सब चीज़ को इन्होंने ये सब चीज़ को स्पष्ट करके दिया है, अनर्थों को और अलग अलग के स्पष्ट, और वो अनर्थ कैसे जाएंगे इसको इन्होंने, सब आचार्यों में अपना अपना वैशिष्ट होता है, भक्ति विनोद ठाकुर जी पीछे के आचार्य हैं, इसलिए सब जितने रूप गोस्वामी से लेकर के विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, नरोत्तम ठाकुर इत्यादि होते हैं, उन सबका सार लेकर के तब इसमें भजन का एक पद्धति बनाया, इस पद्धति को लेकर के हम चलेंगे। इसमें प्रार्थना करने की विधियाँ सब दी गई, कैसे प्रार्थना, यदि और बात छोड़ दो भागवत के इसी श्लोक को ही ले लें, तत्ते अनुकंपां सुसमुत्थानं, जो अभी आएगा बस उसी से ही भगवत भजन हो जाएगा और कोई श्लोक की कोई जरूरत ही नहीं, बस एक श्लोक से उनको ले तब तो। इसलिए बार बार कहते हैं, एक आदमी आज से 10 वर्ष पहले कहा जिस सतकुलना जो पत्र, और फिर आज भी कह रहा देखो अभी तुमको बतला रहे हैं, अभी सच बोल करके ठीक से चलो, तो वही बार बार तो वही तो चीज कर रहा है। हमारे आचार्यों ने जो कहा है अपने शब्द में उन्होंने, अपने एक स्वरूप में उन्होंने अपने तरीके से कहा कि तो वही है, कृष्ण के चरणों में प्रेम हो, इसलिए कोई नई बात नहीं है, नई होने पर भी अपने जिस विचारधारा से कहा है इसमें नया और भागवत का सामंजस्य, इसमें केवल भागवत का श्लोक होगा, भागवत की आवृत्ति। अब कृष्णा आसक्ति, बिना आसक्ति कैसे हो, आसक्ति कैसे हो, जब तक अपना स्वरूप उदित न हो, कल्पना करने से नहीं होगा, माधुर्य कादम्बिनी इत्यादि पढ़ने से ऐसा लगता है कि हम अपने स्वरूप का जो अंतर्चिंतित स्वरूप है, जिसको सिद्ध शरीर है, उसी के चिंता करके उनके अनुसार में हम यदि करें तो हमको आसक्ति हो जाएगी। किंतु इसके पढ़ने से ऐसा मालूम होता है जैसे ऐसे नहीं, कल्पना से नहीं होगा। इसी प्रकार से अपना स्वरूप उदित होगा, अनर्थ दूर होने पर और स्वरूप उदित होने पर आसक्ति अपने आप होगी। ये इनका कहने का तात्पर्य। इसलिए करें कि अपना स्वरूप उदित हुआ नहीं और किसी को भगवान में आसक्ति हो जाएगी, ये संभव है? तब तक कल्पना रहेगी, कोरी कल्पना रहेगी, अपना स्वरूप नहीं है, कृष्ण का स्वरूप पता नहीं, कृष्ण को ऐसे जैसे हम एक हैं उनको पुरुष मान लिया, अपने के एक साधक मान लिया, कुछ संबंध हुआ नहीं, संबंध ये शरीर जड़ में बुद्धि आत्मबुद्धि है तो कृष्ण से संबंध हो गया, हो जाएगा कभी लाख जन्म में भी नहीं। इसलिए स्वरूप की अनुभूति हो, स्वरूप में भी चार प्रकार का जो स्वरूप बतलाया उसकी अनुभूति हो, पर स्वरूप
स्वरूप
भक्ति स्वरूप
अनर्थ साधन स्वरूप विरोधी स्वरूप,
ये सबका ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होकर के तब तक कृष्ण में उसकी रुचि या आसक्ति होगी या उनके नाम और भजन में उनको पाने के लिए साधन में रुचि होगी। हम लोगों को यही पर गड़बड़ी, चाहते हैं जे कृष्ण के नाम में कृष्ण की कथा में आसक्ति हो, किंतु होती नहीं आसक्ति। चेष्टा करते हैं नहीं किंतु होती नहीं। क्यों नहीं होती? इसलिए कभी स्वरूप की अनुभूति नहीं। जिस दिन अनुभूति हो जाएगी, नारद जी ने कह दिया तुम्हारा सब अनर्थ दूर हो जाओ, कृष्ण में आसक्ति हो गया, बस साथ ही एक मिनट नहीं हो रहा है। इसलिए कहते हैं नाम साधक स्वरूप कृष्ण नित्य दास प्रार्थना यथा शिक्षा। इसमें कैसे भजन करो? आसक्ति के सहित यदि निश्चिता भक्ति हो गई और वह रुचि में परिणत हो गई, रुचि कब परिणत होगी? देहात्म बुद्धि जाएगी तो, और देहात्म बुद्धि जाने के साथ साथ में स्वरूप का प्रकाश होगा। इसलिए कहते हैं नाम का जो साधन करने वाले हैं वो लोग कृष्ण का स्वरूप और अपना स्वरूप जान करके और उनका नित्य दास प्रार्थना करेंगे, करते 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 उनके हृदय में बद्धमूल हो जाएगा। यथा शिक्षा आई नंद तनुज किं करम पतितं मा दिशने भवं बुधौ कृपया तौ पाद पंकज स्थित धूलि दर्शक दिशम दिश। बचपन में हम मान लिया कि ये रामचंद्र जी की या कृष्ण की पूजा करते हैं, पिताजी ने कहा, पिताजी भी करते थे, हम भी कर रहे हैं बचपन में छोटे, और कोई अनजान में अजनबी व्यक्ति उसके गांव में कोई आया साधु जैसा और उसके कान में एक मंत्र दे दिया, छोटी सी लड़की है या लड़का, अबो दे मंत्र दे करके वो चला गया, फिर कभी भेंट नहीं हुई। किंतु वही मंत्र एक दिन में जो जिया साधारण रूप में, बस उसको ऐसी निष्ठा, उसको बदल सकते हैं सहजीव में? तो बदल देगा वो सहजीव मंत्र। ये एक ऐसी माने एक चीज है तो कुछ नहीं किंतु ऐसा वो हो जाता है दृढ़ छोड़ता है। उसी तरह से शादी क्या चीज है? दो लोगों को एक कह दिया गया ये तुम्हारे पति हैं, ये और क्या चीज है? कुछ है उसमें? मानो तो सभी है, नहीं तो कुछ भी मत मानो। रजिस्ट्री करके शादियां होती हैं, वो टिकती नहीं है, दो दिन में खत्म हो जाती है। और पहले के लोग संकल्प से कर देते थे ये तुम्हारे पति हैं, विवाह नहीं हुआ तो भी एकदम जन्म तक वो चलता था, ऐसा विश्वास। तो ये साधक के हृदय में ऐसा ऐसा ही कोई सदगुरु हो और उसके अंदर में ये बीज डाल दे सकता है और सचमुच में वो ऐसा ही साधक हो तो उसकी भावना अंत तक नहीं बदलेगी। इसलिए कह रहे हैं यदि साधक ये समझे कि मैं उनका नित्य दास हूं, गुरु का यही कार्य है किसी जीव के हृदय में वो इस चीज को बैठा देंगे, ये तुम कृष्ण का दास, कृष्ण ही तुम्हारे उपास्य हैं और वही तुम्हारे नित्य आराध्य हैं, ये किसी के हृदय में बैठा दिया तो अब ये काम करेगा बहुत दूर तक, अंत तक काम करेगा। उसको बदल देना बड़ा भारी असंभव होता है। तो नंद तनुज किंकरं पतितं मां विषमी भवान गुरु कृपया तो पाद पंकज स्थित दूरी सदृशं विचिन्तय। यह श्लोक चैतन्य महाप्रभु जी का के मुख से निकला। कब का श्लोक है ये? कब का? उनके प्रारंभिक जीवन का है ना अंतिम जीवन का? चैतन्य चैतामृत के में ये कहाँ लिखा गया? अंत के अंत में ना? अंत के अंत में ये है, अर्थात ये गंभीरा लीला का समय का ये है ना? पहले जीवन में उन्होंने ये प्रकाश किया, गुरु जी ने उनको मंत्र दिया ईश्वर पूरी, और उन्होंने कहा कि गोसाई की मंत्र दिला किंबा तार्थ, हमारे गुरु जी ने ऐसा मंत्र दिया उसका फल क्या? प्रकाशानंद सरस्वती जी ने पूछा कि तुम नाचता गाता और रोता क्यों है, भाव दिखलाता है? वाराणसी में ये भाव नहीं बिकेगा, ये बंगाल में ही बिकेगा, ये तव जप्ति है, भक्ति माने वेदांत का ये विरोधी चीज है। उन्होंने कहा क्या कहूँ, मैं मूर्ख रहा, वेदांत समझ में नहीं आया। गुरु जी ने कहा कि वेदांत तुम न मत पढ़ो, अधिकार नहीं तुम्हारा, तुमको एक मंत्र बतला देता हूँ, यही मंत्र है। तो उन्होंने मंत्र बताया और उसकी दृढ़ता के लिए बतला दिया हरे नाम हरे नाम हरे नाम। उस मंत्र को मैं गोपाल मंत्र दिया और करते करते मैं पागल हो गया, कभी रोता कभी चिल्लाता कभी नाचता कभी हंसता कभी जमीन में लौटता, ऐसा क्यों ऐसा हुआ? इसी समय में साधक को स्वरूप की अनुभूति होगी तब, नहीं तो फिर कृष्ण का दर्शन भी मिलेगा किंतु वैसी निष्ठा के साथ में भजन हो तब तो। महाप्रभु कैसे नाम कर रहे हैं? भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ब्रजनाथ जी के जीवन चरित्र में देख लाया और दीक्षा लिया ना, पागल हो गए, लौटने लगे और देखा चैतन्य महाप्रभु को एकदम साक्षात नियुक्त कर। हम लोगों को कितनी बार हुआ है ऐसा? हुआ है ऐसा, इसलिए दीक्षा का ये कारण दिव्य ज्ञान हो गया किंतु अनुष्ठान की दीक्षा में ये असंभव। वैसा शिष्य गुरु रहे तो हो जाए, यथार्थक वो क्या है, कौन दीक्षा?
विद्वद्रोही
की दीक्षा में, किंतु होती है लॉन्ग प्रोसेस, बहुत दिनों में होगा, जरूर होगा, निराश होने की जरूरत है, लेकिन हमको उसका परिश्रम करना पड़ेगा।
उस दिन से शुरू हुआ,
गुरु जी कहा जाए ऐसा ऐसा करो, कम से कम 1,00,000 हरिनाम करो, गुरु वैष्णव की सेवा करो, भागवत का आस्वादन करो, चैतन्य चैतन्य पढ़ो, दिन रात इसी में लगो। अब बताओ हम लोग कितना करते हैं, क्योंकि करेंगे तो होगा नहीं तो नहीं होता। महाप्रभु जी अंत में कहते हैं वो समय तो दीक्षा हरिनाम होगा, वहां से लौट आए, लड़कर के उनका जीवन ही बदल गया। फिर तो संन्यास लेकर के फिर वहां पर पहुंच गए जगन्नाथ, और अंत में वो नंद तनु जपिन करम, मैं कौन हूं? नंद तनुज, अब नंद तनुज माने नंद नंदन, उनका किंकर हूं, तो किंकर हूं माने क्या किंकर हूं? श्रीमती राधिका और बलदेव प्रभु जी से लेकर जितने जीव तत्व भी हैं वो सब उन्हीं के किंकर हैं। बलदेव प्रभु जी भी अपने में, नित्यानंद प्रभु जी भी अपने में किंकर का अभिमान करते हैं, तो वहां ऊपर से लेकर के श्रीमती राधिका जी भी अपने को किंकर अभिमान करते हैं। इसलिए यहां पर ये तो नहीं बतलाया ये किंकर हूं तो कौन किंकर हूं। अच्छा आप लोग अब विचार करके देखिए, महाप्रभु जी ने, महाप्रभु जी कह रहे हैं तो अपने को जब यहां पर किंकर कहा तो इस किंकर में क्या चीज छिपी है? अच्छा वो संत रस के सेवक हो सकते हैं कि नहीं? महाप्रभु संत रस के होंगे क्योंकि संसार से तो विरक्त है, संत रस हो सकते हैं, किंतु कोई मानेगा संत रस भी उनमें है किंतु वही तक नहीं। संत और वो हर्ष अद्भुत करुण रौद भयानक विभत्स, ये सब चीजें विभत्स वर्ष प्रकाशित नहीं, क्योंकि ब्रज में ये सब चीजें नहीं। दास्य, दास्य के लिए कह रहे हैं पतितम नंद तुम्य किंकर, किंकर माने दास। अब ये दास कौन श्रेणी का? सभी लोग दास हैं, दास से हो सकते हैं हनुमान जैसे ही प्रभु जी हैं ये, कोई दास भगवान का इतना ऊंचा उठ करके और इतना रोएगा, इतना भाव में आएगा और गोपियों की केवल बात करेगा? इसलिए ये दास तो नहीं। सख कहो सखा भी क्यों नहीं, इनके आचरण के द्वारा मालूम पड़ता है। इतना अधिक प्रेम है कि वो सख में भी नहीं हो सकता। ही इसे और बढ़कर के बात सुन लो नहीं, यहां पर भी नहीं। वो तो कृष्ण ही है, राधा जी का भाव लेकर के आए हैं, इसलिए कम से कम तो राधा जी का भाव ही इनका भाव है, यहां तक तो निश्चित। इनका भाव क्या है? राधा जी का ही भाव है, इसलिए ये श्रीमती जी, ये श्रीमती जी में कौन सा भाव, कौन सा भाव होगा? उनके भी बहुत सी, बहुत से भाव, वही एक भाव में ललिता जी है, एक भाव में विशाखा जी है, चित्रा जी है, वही एक भाव में चंद्रावली जी हैं, वही पद्मा जी हैं, सब वही हैं, एक एक भाव उनमें, तो इनमें से कौन सा भाव? महाभाव में भी अत्यंत उन्नत जो भाव है मादन मोदन चित्र जल इत्यादि वाली श्रीमती राधिका, जिनके भाव को आस्वादन करने के लिए महाप्रभु जी, कृष्ण ही स्वयं महाप्रभु जी के रूप में आओ, इसलिए महाप्रभु जी सब समय यही सोचते हैं मैं श्रीमती राजदुलारी श्रीमती जी, इसके नीचे उनका। हम लोगों में ये जहां तक जिसका अधिकार है, अभी तो हम लोगों का अधिकार का कुछ अभी निर्णय का कोई जरूरत ही नहीं है, अभी दास साधारण में भाव आना चाहिए। दास भाव होने पर भी वो भी स्थाई है कि अस्थाई है, इस पर भी विचार है, स्थाई होना चाहिए वो। अब यहां पर कारण साधारण रूप में एक इसको करें, किंतु मुक्त प्रग्रह वृत्ति से इसका विचार वहां तक जाएगा, राधा भाव पर। अभिनंदतम यकीन करण, जीव मात्र ही भगवान का दास है। यहाँ तक कि दास में भी उसका गोपी भाव तक का भाव किसी प्रत्येक जीव में हो सकता है अपने अधिकार के अनुसार, तो वहाँ का दास। अब इसको प्रकट करने के लिए हमको श्रद्धा से आरंभ करके साधु संघ अनर्थ निवृत्ति रुचि या आसक्ति तक या इसके बाद तक आने की जरूरत, तब स्वरूप की स्वरूप हमारा जो है इस पर झांकी उसकी आएगी, उस समय में हम देख सकेंगे ये कृष्ण से हमारा क्या संबंध है, तब उसके प्रति आसक्ति आएगी, नहीं तो वैसा स्वरूप की अनुभूति नहीं होने से कभी नहीं। पतितं मा विषमे भवाम बुधौ, कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, विषम भवाम बुधि, संसार सागर में मैं पड़ा हुआ, जन और मरण अनंत समुद्र अथा अनंत समुद्र है, कोई भी आर पार नहीं, कब से हम लोग इसमें हैं और कब तक इसमें हम लोग पड़े रहेंगे, मर भी नहींगे मरेंगे भी नहीं, और डूबने में और समुद्र में पड़ने पर और जानवर उसमें खा रहे हैं और मन मर नहीं रहे, कष्ट सभी है, मैं आग में जल रहा हूं और जलने का कष्ट है किंतु मर नहीं रहा, एक स्थिति है, एक आदमी को गोली से उड़ा दो मर गया था, आग में जल गया साथी साथ में मर गया, जो हुआ हो गया, और एक आदमी आग में तड़फड़ कर रहा है मर नहीं रहा है प्राण नहीं निकल रहा है और सभी कष्ट हो रहा है, ये कितना भयानक हम लोगों की स्थिति है, किंतु अभी अनुभूति नहीं है। इन लोगों को जिनको अनुभूति है वो हमको समझा रहे हैं कि तुम इतने दुख में हो, तुम समझ नहीं पा रहे, क्यों, इसलिए तुम जल करके ऐसा हो गया है ना जो तुम्हारी स्मृति भी खत्म हो गई है, बेहोश हो गया, बेहोश हो जाने पर किसी को कोई काटेगा या जलाएगा तो मालूम होगा, अस्पताल में चीर फाड़ करते हैं, जिस उस समय में हमको कोई आग लगा दे सेंसलेस पड़ेगा उस समय मालूम होगा, ऐसे हमारी ये दुर्दशा है, मैं विषम संसार में पड़ा हुआ दुखा रहा, कृपया तो पाद पंकज स्थिति सद विषम बीच, आप कृपा करके अपने चरण पंकज में स्थित एक धूली के समान समझिए, हमको मान लीजिए, मैं आपके चरणों, भगवान का चरण क्या है, भगवान से तो संबंध नहीं, भगवान के चरण कमल साधु और गुरु है विष्णुपाद अथवा ऐसे ही भक्त भी, अहं हरे तो पाद ही कमूल, पाद के मूल कौन है, वैष्णव लोग हैं, गुरु हैं, वैष्णव हैं, उसमें स्थित मैं धूलि के समान हूं ना, ऐसे ही आप कृपा करके मुझको समझिए और इसी रूप में हमको स्थान दीजिए, तब मैं धीरे धीरे समझूंगा जो हमारा अधिकार क्या है, मैं कौन हूं, कैसे हूं, उनसे के साथ में हमारा क्या संबंध है, इसके पहले नहीं। कोई दुर्गा का भजन करता है और प्रारंभ से ही उसको दुर्गा का मंत्र मिला, अच्छे उसके स्वरूप में दुर्गा का दासत्व है कि नहीं, जब शास्त्रों को विचार करते हैं तो भगवान के सभी दास हैं, अब उसकी सिद्धि वहां तक होगी नित्य स्वरूप में, वो नहीं, एक न एक दिन किसी जन्म में साधुओं का संग मिलने पर वो छूटेगा ही और छोड़ करके भगवान का भजन करना पड़ेगा, जैसे रामायण को ले, काधुसुंड जी पहले शूद्र जाति में थे, वो शंकर जी की आराधना शिवोहम शिवोहम या उनकी पूजा इत्यादि करते, जीव के स्वरूप में भगवान का ही दासत्व है, इसलिए उनकी खूब पूजा निष्ठा के साथ में करता था, और किसी ने कह दिया उनके गुरुजी ने अरे शंकर जी भी उनके दास हैं जिनके, उनका भजन क्यों नहीं करता है, बस उनको क्रोध हो गया, उन्होंने लगा लिया क्या गुरु जी को अपना, शंकर द्रोही मम दास कहा। यह स्वप्न में भी नहीं संभव है।
क्या है वो चौपाई? शंकर
ये भगवान राम कह रहे। जो हमारे भक्त शंकर जी का द्रोह करेगा वो मेरा कभी भी दास नहीं होगा। बात तो ठीक है ये। अब उन्होंने अपने गुरु जी को समझ लिया जे ये हमारा गुरु
शंकर
का द्रोही है। बात ठीक थी कि गलत थी? द्रोह किसको कहते हैं? यदि उनका विरोध करे तब तो उनके गुरु जी ने तो उनका विरोध तो नहीं। उन्होंने कहा कि अरे राम के भी आराध्य वो हैं
शंकर
की, राम शंकर के भी आराध्य हैं राम, और राम का भजन करो, इनको गुरु मान लो। अब वो बिगड़ गया। जगत के प्रभु नियंता सृष्टि करने वाले शंकर जी, हमने आज तक कभी सुनाई नहीं जैसो शंकर जी के भी आराध्य हैं राम, ऐसा होता है? मैं नहीं मानता। और गुरु जी को अंत संत कह करके अपमानित करने मारने दौड़ा। लंबा चौड़ा सूत्र तो था ही, बस गुरु जी को प्रहार ही देने में केवल बाकी था। इतने में शंकर जी ने देखा जैसे ये तो हमारे भक्त को ये पीट देगा ये बदमाश, बस झट प्रकट नहीं हुए। आकाशवाणी से कहा जाओ ये कोटि जन्म नरक में जाएगा इस पाप के लिए, ऐसे शुद्ध गुरु का इसने अपमान किया। उसके समझ में नहीं आया ये शंकर जी क्यों बिगड़ गए। मैं तो शंकर जी की आराधना कर रहा था तो ये शंकर जी क्यों बिगड़ गए, ये तो शंकर जी का द्रोही है। ऐसे ही साधारण लोग वैष्णव को शंकर का द्रोही मान लेते हैं और नरक में जाते हैं कोटि कोटि जन्मों तक। उनके समझ में नहीं आता ये कैसे कह रहे हैं। अच्छा इसने शंकर जी का क्या द्रोह किया? उसके गुरु जी ने कोई द्रोह किया? उन्होंने जो बात असली थी वो उसको बात को कहा, ये शंकर जी के भी आराध्य परम आराध्य हैं, तुम उनका भजन करो जैसे कि शंकर जी प्रसन्न होंगे। शंकर जी का प्रसन्न करने का तरीका क्या है? हमारे जो आराध्य हैं उनकी यदि कोई पूजा कर देना और उनका प्रसाद दे, उनका माला दे, तो हम क्या करेंगे? हाथ लेकर के प्रसन्न हो जाएंगे। कहाँ से ले आए? गिरिराज गोवर्धन का। हाँ गिरिराज जी का बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ले करके अपने खाया, सब लोगों को दिया, अपने गले में माला भी लगाया। कहाँ से ले आया ये प्रसाद? कहाँ का है? ये दुर्गा जी का प्रसाद है। कहाँ से ले आया? वो भवानी शंकरी है ना, उधर में जन्म स्थान के पास कंखल से, वहाँ से लिया। ठीक ठीक, वो दे रहा है वहाँ का सिंदूर और ये सब चीज प्रसाद दे रहा है, उनको प्रणाम कर। भैया ये लेता नहीं, ये तो शंकर जी का और भवानी जी का जरूर ये महाशत्रु है, ये विरोधी है, बस ऐसा मान लेगा। उन्होंने प्रणाम किया बस, अब वो झगड़ा करने लगेगा और ये उसको सम्मान दे रहे हैं उनको समझ नहीं पाएगा, ले नहीं रहे हैं, उसकी आराधना में त्रुटि है। इसलिए जीव मात्र का स्वरूप है भगवान का दास, कृष्ण का दास। कृष्ण ही राम विष्णु कल्कि बामन नारायण सब कुछ है, इसलिए सबको ही कृष्ण के रूप में कहा गया। जीव का स्वरूप और किसी भी देवता के विकार दास नहीं, वो कृष्ण ही का ही किसी के रूप में नहीं। हनुमान जी भी कृष्ण दास हैं, कैसे? इसलिए ये हनुमान जी ही शंकर जी बन गए
हनुमान,
और फिर हनुमान बन गए द्वापर में
भीम,
और वही शंकर जी बन गए गोपीश्वर वृंदावन में जब कृष्ण आए। इसलिए जीव मात्र का स्वरूप गणेश जी का और देवताओं का ये, बल्कि गणेश जी का भी, पार्वती जी का भी, शंकर जी का भी, हनुमान जी का भी, भीम का भी, सबका स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास। इस चीज को समझना चाहिए, इसलिए वो शत्रुता नहीं बल्कि यथार्थ स्थिति को बतला करके उनका उपकार। इस चीज को समझना चाहिए, इसलिए कोटि कोटि जन्म लग जाएं भले ही
किंतु उनका स्वरूप बदल करके फिर इसमें आएगा। और कृष्ण का दासत्व वो डायरेक्ट वो बदलने वाला नहीं, ये सब बदलने वाले चेंजेबल हैं। इसलिए पाद पंकज की धूलि यदि ये समझ में आए और अनुभूति किया, भजन करते करते हम देखेंगे ये हम कृष्ण के दास हैं। पवन नित्य दास मुई तुम्हार पास अधिया, मैं तुम्हारा नित्य दास तुम्हें छोड़ करके संसार में घूमता हुआ ना संसार रूपी महाभवार्ण महा अर्ण अर्ण मन समुद्र पड़ा, उसमें गर्म धाराएं चलती हैं और उससे समुद्र में बड़वा नल आग लगती है, उसमें पानी में ही आग लग जाती है और वो और आग तो पानी से बुझ जाएगी और वो पानी को ही घी बनाकर और उसमें मान ले कि उस धारा में कोई पड़ जाए तो सब मछली फचली जितने जानवर जीव सब खत्म हो जाए। बड़े बड़े वहां पर ये हैं घड़ियाल, उसको भी मगरमच्छ
हिमिंगिल
इत्यादि मछलियां हैं, नौकाओं को भी बड़ी बड़ी जहाजों को उठा करके फेंक देती हैं और चीर देती हैं और बड़े बड़े ये सब घड़ियाल फड़ियाल सबको खा जाते हैं, वो ऐसे ही निगल जाए। बड़े बड़े सर्प और न जाने क्या क्या समुद्र में है, उसमें हम लोग मर रहे हैं। संसार दुख जलदौ पतितस्य काम क्रोधादि नत्रम करई कबल इतस्य दुर्वासना निगृतस्य निराशयस्य चैतन्य चंद्रमा देही। ये भयानक समुद्र है संसार और उसमें काम क्रोध वो सब क्या करेंगे, काम क्रोध ये सब ऐसे मगरमच्छ हैं, लोभ मद मोह मात्सर्य, कि अब एक जन्म होता है फिर दूसरे जन्म के लिए हजार जन्मों के लिए मनुष्य जन्म में ही प्रस्तुति करा देते हैं, खाता इसी समय में खुल जाता है, बैंक में जमा हो जाता है, कोटि कोटि जन्म होंगे उसका सब उसी में खाता खुल जाता है, अब इतना जन्म मनुष्य जन्म और फिर मर करके कोटि कोटि जन्म मिल जाता है। और ये जन्म यदि सुधर जाए ये कोई कामना वासना ना करके भगवान का भजन करे बस उसका जीवन सुधर जाए, किंतु बहुत विघ्न बाधा है सहज नहीं है। इसीलिए कहते हैं तब नित्य दास हुई तुम आपाशरिया, आपको भूलने की वजह से भगवत की भूलने की वजह से इस भावर्ण में गभीर समुद्र में पड़ा हुआ हूं, कृपा करी परम मोरे पदधूलि। आप अभी पदधूलि नहीं हुए हैं, कहते हैं कि कृपा करके आप हमको पदधूलि बनाइए, समझिए आप समझने से ही हो जाएगा, पदधूलि होने से पद को हम लोग नहीं छोड़ेंगे, किंतु भगवान तो अभी दूर हैं, अभी कैसे होगा, भगवान के जो भक्त हैं उनसे संबंध करके उनकी पद की धूलि तो बनो पहले, तब फिर पीछे भगवान का होगा, यहीं पर नहीं होता है, दम्भ अभिमान सब हम लोगों को जकड़े हुए होने नहीं देते। तुम्हार सेवक करो तुम्हार से, तुम्हारा सेवक होकर के निरपराध नाम संकीर्तन करने से करते 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 कृष्ण कृपा से भाव उद्गम होगा। यदि कोई निरपराध होकर के कृष्ण नाम कीर्तन करे और भगवान की कथाओं को सुने तो जरूर शुद्ध नाम उसके हृदय में उदित होगा, उसका स्वरूप ही उदित होगा, सब उसका कल्याण, शुद्ध नाम होना चाहिए। अभी हम नाम कर रहे हैं, नाम करते करते विक्षेप लय कितने प्रकार के सब आते, नाम एक नाम किया और दूसरी चिंताएं आ गई, उधर की चिंता इधर की चिंता उधर की चिंता, लाखों प्रकार की चिंताएं, इन चिंताओं को छोड़ करके जरा करो तो देखें, ऐसा नाम यदि होगा तो थोड़े दिन में ही आसक्ति प्रेम भाव सब कुछ उदित होगा, किंतु होता नहीं, क्यों नहीं होता, इसमें गलती भगवान की है कि हमारी गलती है, हमारी अपनी गलती है, किंतु वह सुधरेगी नहीं अपने चेष्टा से, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे और वो कृपा करके शक्ति संचयित करेंगे तब ऐसा हम नाम कर सकते हैं, ऐसा नहीं। भागवत का प्रसंग मिल गया है प्रथम स्कंद में, परीक्षित जी बैठे हुए हैं, हरी कथा सुन रहे, ये सुना रहे, कहते कि देखो यदि सुनना है भगवान की कथा जैसे तुमने प्रश्न किया है तो हम कहते हैं वैसा सुनो। साधक अपनी क्षण सार में मत बैठे और सुनो, जैसे गुरु उपदेश देते हैं ना उस प्रकार से सुनो और उसके बात में एकदम विश्वास रखें। ऐसा कुछ लोग सुनने के लिए आते हैं और सुन करके चले जाते हैं, वो सुने क्या, कान में वो आज टकराई और बस। हम लोगों में भी, पुरुषों में भी ऐसे हैं, कुछ समझ आने बैठे हुए हैं, बस बैठे हुए हैं, समझने की चेष्टा करनी चाहिए, तब तब फल होगा। इसलिए कहते हैं परीक्षित महाराज जी को, देखो तुम सुन रहे हो किंतु कैसे सुनो, ये देखो हम तुमको कायदा बतला रहे हैं, वैसे हम लोगों के लिए ये कायदा नियम को पालन करो। स्त्री पुरुष का भेद नहीं है इसमें, वो नहीं समझ सकेंगे, पुरुष समझ लेंगे या पुरुष नहीं समझेंगे स्त्रियां, ऐसा कोई नहीं, प्रत्येक जीव मात्र। किंतु एक बात है, विद्या के बल से इन चीजों को नहीं समझ, बल्कि वो बाधा, वो विद्या का अभिमान भी, चार प्रकार का अभिमान कहा वो उसको भी छोड़ो, उच्च कुल में जन्म लेने का, विद्या का, रूप का, ये सब छोड़ो तब होगा। एक आदमी एक निरक्षर है, कुछ नहीं जानता, वो भक्ति में बहुत आगे बढ़ सकता है और जाता ही है अधिकार, और महाविद्वान होने पर भी। खूब समझने वाले हैं संस्कृत और हिंदी और ये बड़े बड़े अफसर तक वो हुए हैं, किंतु एक निरक्षर बालक जो अपने गुरु की सेवा करता है उसमें जो एकांतिकता आती है, देखो तो जगत में ढूंढ करके जो एकांतिकता, ये छोटी सी चीज जो प्रारंभ की चीज है, बड़े बड़े विद्वानों में लाखों में से कोई एक को होगा। आप लोगों को सहज में है, लड़कियों को भी सुनते सुनते ये हो, कृष्ण की छोड़ करके अब अपना हृदय कहीं नहीं बनाया, चाहे लाख कुछ हो जाए, ये एकांतिकता है। बड़े बड़े विद्वानों में अभी यहां पर भी बड़े बड़े विद्वान हैं, एकात्मिकता नहीं। शंकर जी, दुर्गा जी, गणेश जी, हनुमान जी, कृष्ण जी, राधा जी, सब एक साथ में एक आसन पर बड़े पड़े हैं, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, सब कोई एक रुष्ट ना हो जाए, मानो ये सब अलग अलग देवता, अलग अलग ठाकुर और सभी स्वयं को है। स्वयं माने क्या, अलग अलग सभी हैं, अपनी सब बतलाओ ना उसकी उपासना, साधारण भी उसका कुछ भी नहीं हुआ, कोई आदमी आएगा महाराज जी मेरी कैसी उपासना, बहुत अच्छी हो रही है, और कोई हम लोगों में से अखड़ रहा है तुम्हारा कुछ भी हुआ नहीं, तो उसका मन खराब हो जाएगा, तुम्हारा प्रारंभ ही नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि तुम बेकार की बातों को सीख करके और भी इतना बढ़ा दिया कि तुम असली बात को तुम जीवन में, इस जीवन में अंततः नहीं सीखो। हारमोनियम बजाने वाले की यहां कोई गया, भाई हमको सीखना है, मैं कुछ कुछ सीखा भी हूं, थोड़ा सा बहुत सीख लिया हूं, किंतु आपके पास आया जी, आपके पास में पूरा सीख लिया, मैं बहुत कुछ थोड़ा बहुत जानता हूं किंतु आपसे और सीख, जो सीख करके आए हो आता है, हमारा फिर 300 रुपया महीना लगेगा। उसी समय में एक दूसरा बालक है, गुरु जी मैं आपसे हारमोनियम सीखना चाहता हूं, कुछ सिखाओ का है तो नहीं, एकदम नहीं आता है, नहीं। जाओ 100 रुपया महीना दे, मैंने सिर्फ 300 रुपया ले रहे हैं और इसको 100 रुपये में शिक्षा दे रहे हैं, अरे तुमने जो सीखा है ना इसको भुलवाने में हमारा बहुत परिश्रम लगे, तुम्हारा सब बेकार का सीख लिया, तुम्हारा वो चौपट कर दिया है, स्वभाव ही तुम्हारा बिगड़ गया, उस बिगड़े स्वभाव को हमको सुधारने में ये 200 रुपया, आपसे तो 500 रुपया लेता भी कभी, आपको बहुत मुझको चेष्टा करना पड़ेगा, और इसको कुछ नहीं, उसको जैसा लिखाएंगे वैसा ही लिख देगा। इसलिए एकांतिकता होना ये साधारण बात नहीं है परमार्थ जगत में,
कृष्ण ही हमारे मूल आराध्य हैं, मैं उनका दास हूं, जिसके अंदर में आ गया वो पथ पर आ गया, और नहीं तो बाकी सब इधर उधर घूम रहे हैं, अभी कोई रास्ता ही नहीं उनको मिला है। इसलिए कहते हैं कृपा करी करम और पदधूलि सम। एकांतिक जो भक्त हैं उन्हीं के चरणों की पहले पदधूलि तो हूं, ऊपर से दिखता है कि ये सबका आदर करता है, जैसे आजकल के ये है ना जन नेता जिसको कहते हैं, जन नेता गण नेता गणनायक सब बने हुए हैं। यदि कुछ निष्ठा भी है, थोड़ी सी रुचि भजन की श्रद्धा है, किंतु एक में कोई निष्ठा नहीं और न उनकी श्रद्धा है, बस गद्दी की अपनी, बस जितना राजनीतिक झगड़ा और सब ये चल रहा है। बहुत कम ऐसे हैं जिनकी एकांतिक निष्ठा है, उसमें रह हो उस समाज में हो ही नहीं सकता। इसलिए संतों के साथ में ऐसा होगा जो एकांतिक हो तब तो एकांतिक बुद्धि है, ये पहला प्रारंभ होगा एकांतिक का, तब फिर आगे हम बढ़ेंगे। तस्मिन् मतांश कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, तो ये बात लागा परीक्षित महाराज जी को ये कह रहे हैं जे कैसे सुनना चाहिए ये पहले सुनो, और सुनने से क्या होता है ये भी सुनो। देखो जगत के आराध्य कृष्ण है, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान, ये पहले ही बतलाया, और उनकी एकांति का आराधना ही सवाई पुंसान परो धर्मो जतो भक्ति रथो खजे अहेतुक्य अप्रतिहता जयात्मा, उसी का भजन करने से ही आत्मा।